গোস্বামী বলতে আর এখন বলছেন কি সবাই পুনসা পর ধর্ম যত ভক্তি দক্ষে আহে দুঃখ অপরিহাতা জয় আত্মা নিশ্চিত রূপে আমি বলছি জগতে যত প্রাণী মাত্র আছে শুধু মনুষ্য না মনুষ্য কীট কন্ধর্ব এই পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ পেড় পৌধা যা কিছু আছে জলে থলে আগুনে প্রাণী সব রয়েছে যত প্রাণী আছে তাদের নিশ্চিত রূপে একটি পরম ধর্ম ধর্ম অনেক হতে পারে কিন্তু পরম ধর্ম সকলে ভক্তি অথক্ষে ভগবান তাহার পাঁচ পদ মেতে ভক্তি কিন্তু কিরকম আহেতু কি ধর আবত অবিচ্ছিন্ন গতিতে তার মধ্যে কোন জাগতিক স্বার্থ নাই যেরকম নদী চলে পর্বত সমুদ্রের মধ্যে যাচ্ছে কেন যাচ্ছে তার কোন স্বার্থ আছে কি তার ধর্মই হচ্ছে এই জন্য জীবের পরম ধর্ম শুদ্ধ জীব ধর্ম যারা আছেন তারা ভগবান নিত্য দাস জীবের স্বরূপ কিন্তু আমরা বর্তমানে কি হয়েছে এমন পড়ে গেছি পরিস্থিতিতে ভগবানকে ভুলে গিয়ে যে এখন কি করণীয় আমরা বুঝতে পারি না আত্মা কিসে মঙ্গলে বুঝি না একজন মনে করুন দিন রাত সাধু সঙ্গে থেকে দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ করে কিরকম দীক্ষা বিদ্বৎ রূঢ়ি কাকে বলে আমাদের সবচেয়ে দীক্ষা ইত্যাদি অবিদ্বৎ রূঢ়িত হয়েছে বিভিৎসা ওইটা আমরা ওই স্থিতিতে পৌঁছে যাই বুঝতে পারি এই জন্য আমাদের দীক্ষা যে আমরা ভজন করতে থাকি আর যারা বিদ্যাদৌড়িতে হয়েছে তারা ভজনের মধ্যে প্রবেশ করছে ওদের দিব্য জ্ঞান হয়েছে যে আমি এই শরীর নয় এই মাটির মূর্তি আমি নই আমি হচ্ছি ভগবানের অংশের বিভিন্ন আমি ভগবানের নিত্য দাস কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এই বিদ্যাদৌড়িতে তারা দীক্ষা নিয়েছে দিব্য জ্ঞান হয়েছে কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ জ্ঞান হয়েছে এরকম তারা দীক্ষা ওদের কৃষ্ণ সেবা ছাড়া আর কিচ্ছু নাই তারা হরি কথা ছেড়ে দিয়া যেরকম রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর সঙ্গে কথা বলছে রূপ গোস্বামীর সঙ্গে মহাপ্রভুর সঙ্গে কথা বলছে এই কথা নিয়ে তারা সবসময় স্বরূপেতে বিচরণ করছে আমরা এখন এত হরিনাম নিয়েছি কিন্তু হরিনামের মহিমা জানি না ভগবৎ সেবা আমরা কিছু করছি কি করছি মন্দির করছি মশাতে যাই কখনো যাই অনেকটা কিছু করি কিন্তু হরিসেবাতে যে প্রবৃত্তি আছে উৎসাহ করব আত্মজ্ঞান লাভ করে দিয়ে ভগবৎ সেবাতে যে প্রবেশ করব এইগুলি চিন্তা আমার তাতেই সন্তুষ্ট আছে রূপ সনাতনকে রায় রামানন্দকে কেউ যদি বলে যে তোমরা এই মন্দির কর তত্ত্ব বুঝবেন মন্দির কর তারা কি করবে সনাতন গোস্বামীকে কেউ বলে যে মন্দির কর দিন রাত এর মধ্যে লাগে করবে কি তারা কি করবে ও স্বরূপে তো সবসময় ভগবানের সেবাতে অষ্টকালী বিদায় চিন্তনেতে তারা আছে তাদের এই ফুরসত হবে না কিন্তু আমরা বদ্ধজি অনর্থগ্রস্ত আমরা এই যদি না করি তাহলে আমাদের চিত্ত নিরোধ হবে না অন্যদিকে যাবো এই জন্য গুরুপাদ পদ্ম এইসব গুলি কাজেতে লাগবে বিভিন্ন রকমের সেবক আছে ব্রহ্মচারীরা আছে তাদেরকে বলা হয় তুমি এখানে বসে দিয়ে এক লাখ হরি নাম করো চিত্ত মনটা কোথাও যাও না করতে পারবে কি করতে পারবে তাহলে তাদের জন্য কি করবে বলবে তুমি একটা এই মোকাদ্মা একটু এসেছে তুমি মোকাদ্মা করো তোমার চিত্ত বৃদ্ধি লাগবে তারপরে প্রতিমন কাত্রের মতন অবস্থা আছে, তিনি যে ভজন রস ইত্যাদি করছেন। আমাদের উদ্দেশ্য কি? জীবনের উদ্দেশ্য হরি সেবাতে প্রবেশ করা। অতএব ক্রমে 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 যেন সব উন্নত পথেতে যাবে। এই যে বললেন সবাই পুনসাং পরো ধর্ম যত ভক্তি অধকজে আহে দুঃখ অব্যবহিতা যা ভক্তি অপাবিত। প্রকৃতি থেকে অতি অধকজ যেখানে মন বুদ্ধি এইসব কিছুই জানতে পারে না, ওই রকম হয় যে আত্মা তার মানে যে সেবা এই জগতে স্থির করে নিয়ে তার মধ্যে চলে, তারপরে পরে মুক্তি হওয়ার পরে ওদিকে যাবে। এই সব গুলি আমাকে স্থির করা হোক ধীমান গায়ে এই করে সবসময় হয় কথা দেখে সৎগুরু নিকটে যে এই সব গুলি অনুশীলন করবে, যাদের সুকৃতি নাই তাদের এইগুলি হবে রুচি হবে, হয় কথা হলে পালাবে, বলে যে আমার বহু কাজ আছে খুঁজেতেই আসতে পারে। আর যারা বুদ্ধিমান পুরুষ কি করবে, সব কাজ ফেলে দিয়ে এমনকি স্ত্রী পুত্র পরিবার ধন সম্পত্তি প্রতিষ্ঠা সব কি করবে। আপনারা শুনেছেন শিল গৌকৃষ্ণ দাস মনেন্দ্র চন্দ্র নন্দী কোথাকার রাজা, হ্যাঁ রাজা মনেন্দ্র, তার কাছে গেলে যে আমার বাড়িতে একটা বিরাট সভা হচ্ছে বৈষ্ণব সভা, আপনি একটু চলুন প্রিসাইড করবেন। বারবার বলাতে বললেন যে সে কিসের জন্য করছে, ওখানে আমার গেলে তোমার কি লাভ হবে, তুমি ওই সব ছেড়ে টেড়ে দিয়ে আমার কাছে এসে কিছু হরি কথা শোনো, তুমি আমাকে কি দিবে, আমি তোমাকে এই লঙ্গটি দিচ্ছি জোর পক্ষে তুমি নিয়ে ভজন করো তো পারো কি। তিনি মা বৈষ্ণব সব জায়গা তাতে খ্যাতি বহু গ্রন্থ ইত্যাদি প্রকাশন করেছে, কিন্তু এই জন্য আপনারা সকলে সব চেষ্টা করেন যে এইরকম এত কি ভক্তি কিরকম, এত কি ভক্তি মানে কি বৈদিক ভক্তি, এত কি ভক্তি নয় চিত্তের বৃত্তি না চাইলেও তার মধ্যে চলছে দৌড়াচ্ছে, অন্য কাজ করছে কিন্তু আমার চিন্তা কোথায় যাচ্ছে ভগবানের কিরকম যাচ্ছে, আর যশোদা মা কৃষ্ণকে কিরকম বন্ধন করে যে সমস্ত জগতের সৃষ্টি যারা করে তাদের প্রভু প্রভু যিনি, আর তাকে যশোদা মা বন্ধন করে এটা কিরকম হল। এই সব দিটা সনাতনের সঙ্গে ওই কৃষ্ণ দৌড়াদৌড়ি করছেন, তাকে ওই পিঠো ফল খাওয়াচ্ছে কিন্তু তার কান্দাতে চাপছে, যা কল্পনা করা যায় না অর্জুনের পক্ষেও কল্পনা করা মহামুশকিল। অর্জুনকে কৃষ্ণ ভগবান হয়ে আপনার নিজের ভগ্নীকে বিবাহ করে দিয়ে এটা কল্পনা করা যায়, অর্জুনের রথ আছে কিন্তু ভক্তরা তাতেও সন্তুষ্ট না, উদ্ধবের ভক্তির দ্বারাও তারা সন্তুষ্ট না, এমনকি সফরের সাথে যে কৃষ্ণের সেবা হয় ও দিলে তারা লেয় না। কৃষ্ণ ভক্তি রস ভাবিতামতি প্রিয়তাম কুতো লভ্যতে তত্র নৌলমপি মূল্যমেব জন্ম সুকৃতি, কোটি কোটি জন্মের সুকৃতি দ্বারা ও হবে না, যদি রসিক ভক্ত কোনো যদি পাওয়া যায় তত্ত্বজ্ঞান রসিক ভক্ত কিরকম রামানন্দ মতন স্বরূপ দামোদরের মতন রূপ সনাতনের মতন পরবর্তী কালেতে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ইত্যাদি ভক্তি বিনোদ ঠাকুর ইত্যাদি এইরকম রসিক ভক্ত পাওয়া যায়, সব কিছু ছেড়ে দিয়ে তার চরণে একান্ত আশ্রয় তাহলে এইগুলি বুঝতে পারে না। এই হচ্ছে জীবনের মূল উদ্দেশ্য, এই জগতে থাকা কালেই এটা নিশ্চিত করে নিতে হবে যে আমার উদ্দেশ্য কি, ভজনের আমার মূল উদ্দেশ্য কি। এইটা যদি না স্থির হয় কোটি কোটি জন্ম লেগে যাবে, এই জন্য এত কি ভক্তি কি। এই গোপকৃষ্ণ দাসবাজি মহারাজ জীবন চরিত্র তিনি ব্রজমণ্ডল থেকে এখানে আসবেন, বহু ভক্তি বিনোদ ঠাকুর কাছে যাচ্ছেন গঙ্গার কোন দিক থেকে ও বাড়ি যাচ্ছেন, তিনি গান করে কি করছেন খুব জোরে কোথায় গো প্রেমময়ী রাধে রাধে, কোথায় গো কৃষ্ণ বিলাসিনী চোখ নাই,
আর চোখ করে
চোখের জল পড়ছে, চিত্ত দ্রবিত হয়ে গেছে, কখনো আপনারা করতে পারবেন। এইগুলি এই জগতে থাকা কালে এই ভাবভক্তি পর্যন্ত হবে, মনে করবে কুকুর শিকাল সব আনন্দিত হয়ে, এটা মনে রাখুন। এত সুন্দর শরীর, পিসের মধ্যে এক নম্বর, পিসের মধ্যে ও দু চারজন দশ লোক এখানে দাঁড়িয়ে চলতে পারে এখন সব, আর বিরাট ধনী। কিন্তু গতি কি হবে, গতি কি? এই জন্য সকল বিচার করে এত সব ছাড়, এই সব জঞ্জাল ছেড়ে দিয়ে কর্ণাশ্রম ধর্ম ছেড়ে দিয়ে কি করবে, একাত্মিক ভাবতে সদ্গুরু পদাশ্রয় করে দিয়ে আর সময় এক মুহূর্ত নষ্ট না করে এই সময় যেতে, তারা ওখানে বসে বসে ধর আমাদের ভক্তি সুলতান কাজ ভালো কেন এই ভুলি রূপ সনাতন কি করবে, প্রবেশ করতে হবে। বাহিরের কাজেতে যদি আমরা না জানো এদিক ওদিক, একজন ঠাকুরের পূজা করতে গেল তো পুষ্প চাই, পুষ্প তুলতে গেল পুষ্প দেখে যে সে কম আছে, তাহলে কি করা যায়? এখন ঠাকুরের পূজা ছেড়ে দিয়ে কি করতে লাগলো, যে গাছ লাগাইতে লাগলো, বহু রকমের গাছ ফুল ফলে, আর ওখানে জল দিতে আরম্ভ করে, যখন ফুল হবে তখন পূজা করে, আর এই ফুল দিলে পরে তাহলে একটু গাছকে চলে গেল। গাছটা তো শুভ ছিল কিন্তু লেগে গেলে এই দিকে, যে কাজের জন্য আমাদের জন্ম হয়েছিল, মঠ মন্দির করবার কি দরকার, মন্দির আর মঠ কিসের জন্য হবে, যাতে ফজল করবো অন্য লোকের ফজল করাবো, এই জন্য তো। আর যদি সারা জীবন মন্দিরে হতে থাকলো তাহলে কি হলো, সারা জীবন দশ জন ঘরে মন্দির করতে থাকলো, একটা সুখ কি হলো, এটা ঠিক জীবন নষ্ট না। এই জন্য রূপ সনাতনের আদর্শ নিয়ে আমরা ব্রহ্মচারীদের মধ্যে তাই আত্ম ভজন করতে, আর এই যে দিকে কাজে পকেট করতে লাগে, ব্যাংক ব্যালেন্স করতে, তাতে আমাদের তো কোনো ক্ষতি না, ক্ষতিকার হবে ভজন যে প্রবৃত্তি আছে এটা ডেভেলপ পারবো। এই আমাদের স্কুলের ফান্ডস হলে এই জন্য ভজনে না গিয়ে ব্যবসায়ের মধ্যে লেগে, তা আপনারা সব ব্যবসায়ের মধ্যে যাবেন না, ভজন করবেন। আমরা যে কাজে তো লাগিয়েছি যাতে এই কাজে ক্রমশ উন্নত হয়ে চিত্ত বৃত্তি ভগবানের দিকে না। আমরা একটা টোল করলাম, টোল করবার উদ্দেশ্যে কি, যাতে ওরা গ্রন্থ ইত্যাদি পড়বে ভজন। আর যদি ও টোল করতে ঘর করতে লেগে গেল, আর রেজিস্টার মেনটেন করতে গেলে, আর ছাত্র জুটাইতে গেলে, তার সারা জীবন চলে গেল 80 বছর পর্যন্ত, আর নিজেই যে গ্রন্থ মধ্যে প্রবেশ করলো না, রূপ সনাতনের বিচার জানলো না, তাহলে তার কি হলো, মনে তার কি অবস্থা হবে? এই জন্য মূল উদ্দেশ্য ঠিক রেখে কথা, এইসব না উদ্দেশ্য রাখলে ঠিক, ভজনের মধ্যে যদি প্রবেশ না হলো তা আর শেষ হয়ে গেলে, আর তোমার ইচ্ছা করলেও এইসব শুনতে ইচ্ছা করবে না। কোথায় গোপীগণের কথা, কৃষ্ণ নিজে বলছেন, না পারে হম নির্বদ্ধ সংযোগ, আমি তোমাদের ঋণ আমি শোধন করবো না, পারবো না, দেবতা মতন আয়ু পেলেও তোমাদের ঋণ শোধ, ঋণটা কি এই চিন্তা করবার অবকাশ আছে কি? আমি জিজ্ঞাসা করি যে সে ঋণটা কি যে কৃষ্ণ শোধন করতে পারে, তাহলে হয়তো অনেকেই অনেকেই মানুষ কারণ সেই বলতে পারে, চিন্তাই করতে পারে, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তিনি সমস্ত তার শক্তি রয়েছে, পাওয়ার রয়েছে, তিনি সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ করে দিতে পারেন। তাহলে গোপী কেন কাছারিনী কেন হলেন? এমন কতগুলি জিনিস আছে, কৃষ্ণের সবকিছু আছে, কিন্তু এমন একটা জিনিস আছে যে কৃষ্ণের নিকটে নাই, ওই গোপী বলে ভক্ত বলে নিকটে আছে, কৃষ্ণের কাছে ওটা না। কি একটা সাধারণ ভাবে বুঝো, কৃষ্ণ সবকিছু দিতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণের সেবা কিরকম করা যায়, প্রসন্ন করা যায়, এটা কৃষ্ণ বলতে পারে কি? কি বললাম এই গোপীরা জানে তার সেবা করে, কৃষ্ণ ওই রকম সেবা করতে পারে কি? একটা সাধারণ ভাবে একটা সাধারণ ভাবে পতি পত্নী আছে, পতিটা তার স্ত্রী যত দুঃখায় একটা মনোকামনা পূর্ণ করবার চেষ্টা, কিন্তু তার স্ত্রী যে ভাবেতে সমস্ত অঙ্গ দিয়ে সমস্ত বিচার দিয়ে সমস্ত ভাব দিয়ে সেবা করতে পারে, পুরুষ করতে পারে, সম্ভব আছে পুরুষের প্রভু? তাহলে গোপীকণের নিকটে এমন কিছু আছে, প্রীতি আছে, প্রেম আছে কৃষ্ণের প্রতি, যে কৃষ্ণ মধ্যে নাই, এই জন্য তিনি ওই ভাবটাকে গ্রহণ করবার জন্য মহাপ্রভু রূপে হয়ে কৃষ্ণ আসে। তার মধ্যে প্রেমের একটা এমন ভাব আছে, কৃষ্ণের মধ্যে প্রেম আছে ঠিক আছে, কিন্তু গোপীগণে যেরকম প্রেম করে তাকে প্রীতি করে সেবা করে, ওইটি আমাদের আনতে হবে, আমাদের মধ্যে কিছু আসুক যাতে আমরা সেবা করি। এটা কিসে আসবে? যারা সেবা করছে তাদের আনুগত্যে যে ভজন যদি করে তাহলে আসবে, উপর ছাপরের সেবা দ্বারা হবে। এই জন্য বৈষ্ণবরা যে যে রকম অধিকারে আছে সেই রকম অধিকারে নিযুক্ত করে দিয়ে ক্রমশ সুকৃতি করিয়ে দিয়ে আর উপরে চেষ্টা করে, কিন্তু এই উদ্দেশ্য তার তাহাদের না বুঝায়। যদি ওই নির্দিষ্ট সেবাতেই লেগে গেল, ফুল বাগান বলো যে সে একটা ঠাকুরের পূজা হোক, আর সারা জীবন ফুলই বাগান লাগাই গেল আর ফুলটা নিয়ে ঠাকুরের সেবা করলো না, তাহলে কি হলো? এইটা বুঝো। এই জন্য আপনারা যথাযোগ্য যে অধিকারে আছেন বিদেশেতে যে আমরা এইটা বলি, তোমাদের কি টাকা দিবে? আমরা যে ধন তোমাকে দিচ্ছি এই কৃষ্ণ ভজন করো, তোমার সুখে শান্তি, আমাদের দেওয়ার তোমাদের কিছু নাই, এই জন্য আমরা যে এসেছি দিতে হরিনাম কর, কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি কর। এইরকম ভাবে আপনারা এইগুলি বুঝুন, বুঝে ক্রমশ ঘরে থাকলেও আমাদের চিত্তবৃত্তি কোথায় থাকুক, গুরু পাদ পদ্মেতে বৈষ্ণবের নিকটে থাকুক, যাতে সবসময় তা বিষয় একটা প্রতি এবে আছে যে আমার সেই মতো প্রতি হোক, এটা চিন্তন করবে। আমার চুলের প্রতি যতটুকু প্রীতি আছে, চুলটাকে ঝাড়ি মুছি লাগাই, তাকে পারফেক্টটা করি, কিরকম করি, চুল ছাটাই করি, অতটুকু যদি আসক্তি ভগবানের দিকে দেওয়া যায় তাহলে তো মঙ্গল হয়ে যায়। আমার শরীরের প্রতি যতটুকু ধ্যান দিই তাহলে তো অল্প একটু দেওয়া যায়, ওই রকম হয়তো ভগবানের প্রতি যদি আসক্তি হই এইসব নিয়ে চেষ্টা করি। আমার গভীর অর্থ ভাবে আপনার গ্রহণ, স্থূলের দিকে গেলে সামঞ্জস্য করতে পারতেন, তাহলে বলবেন যে ও মহারাজ তাই বলছে যে নিষেধ করছে, এইটা নয়, কারণ আমাদেরকে উন্নত আর সব বই কাজ তারা তাই নিভিয়ে দিয়ে ভজনের মধ্যে নিয়ে, ওরা বসে বসে কি করে, রূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামী বসে কি করে, আমরা বসে উয়া কি করি, আমরা বসে বসে দিন রাত ঘরের মধ্যে বন্ধ করে দিয়ে কার সঙ্গে দেখা না করে, ওর মধ্যে কি আনন্দ আছে আপনার ধারণা করতে পারবে। তার মাঝে যদি প্রীতি লেগে যায়, এত সুখের অনুভূতি হয় যদি হরি নাম করতে, আর চলতে কোনোরকম প্রতিষ্ঠাতে যাবে, রূপেতে যাবে, কোনোতে যাবে। এই জন্য বৈষ্ণবরা যারা ভজন করবে, তৃণাদপি শুনেই চেনা তরদপি সাহে শুনুনা আমানিনা মানদে এই গুণটা থাকবে। প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু করবে না, প্রতিষ্ঠার থাকবে কি
শ্রীমন মহাপ্রভু इस महि पर पधारे, विपात्र अपात्र का बिना भेद किए हुए इस पृथ्वी के संपूर्ण प्राणियों के शुष्क अंतकरण में कृष्ण माधुर्य रस की धारा का प्रवाह कर सके, सबकी रचना पर, सबके हृदय में, सबकी चेतना में, सबकी क्रियाओं में कृष्ण भजन श्री राधा माधव के चरणार विंद का अनुराग मूर्तिमंत हो जाए और यह जीव इस आवागमन के चक्र से विवर्त से मुक्त होकर भगवत चरणारविंद को प्राप्त कर सके। और श्रीमद् महाप्रभु का जो रूप है वह है अनंत अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह, वज्रामृत सिंधु में भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत सौंदर्य के विषय में आचार्य चरण कहते हैं अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह। अखिल रसामृत सिंधुओं का जो सार है वह श्री कृष्ण का माधुर्य है, श्री कृष्ण का सौंदर्य है। और उस श्री कृष्ण माधुर्य सिंधु में जब श्रीमती राधा रानी अवराधन स्नान करके चलती हैं तो उनके अंचल से अनंत सिंधुओं का निरंतर वर्षण होता रहता है। जैसे कोई स्त्री, कोई माता जमुना जी में बलबल की साड़ी पहनकर जमुना जी में स्नान करे और जमुना जल में भीगी हुई उस साड़ी से ही अपने घर की ओर प्रत्यावर्तित हो, अपने घर की ओर वापिस लौटे और उसके अंचल में जैसे बूंद बूंद बिंदु 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 जमुना जल टपकता हुआ उसके घर तक की भूमि को अभिसिंचित कर दे, उसी प्रकार श्री कृष्ण के अनंत रस सिंधु में स्नान करके जब प्रजाति चलती है तो साधारण स्त्री के तो अंचल से बिंदु बिंदु निपतित होते हैं लेकिन श्री राधा रानी के अंचल से सप्त सप्त सिंधु निपतित होते रहते हैं। सिंधुओं के विषय में प्रबोधानंद सरस्वती पाठ जिसका विवेचन करते हैं वही दत्त सिंधु रनुराग रसयित सिंधु वात्सल्य सिंधु रति सांद्र टपयित सिंधु लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु श्री राधिका स्फुरत में हृदय के सिंधु उन अखिल रसामृत सिंधु सार श्री विग्रह नंद नंदन गोविंद का जो अत्यंत माधुर्य है, नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का जो अनंत लौल्य है, सौख्य है, सौमनस्य है, नख से लेकर शिर पर्यंत जिनकी अत्यंत रूप माधुरी के आस्वादन से विभर चित्ता मन में गए हुए परमहंस गुरुदेव सुखदेव जी आश्रम में प्रत्यावर्तित होकर श्रीमद् भागवत को आत्मसात करके और अपने पुत्र चंद्रमा में से उत्प्लावित करके कलिकाल की अग्नि में भस्म हो रहे प्राणियों के शुष्क अंतकरण में जिस अमृत कालिंदी का प्रवाह कर रहे हैं उस रस माधुर्य की अनंत लालसा और अत्यंत वहाँ आनंद के महाद्रव नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत रूप माधुर्य की उत्खलित अनंत तरंगों के अत्यंत महासिंधु जब धन रूप में समुदित होकर इस महि के ऊपर प्रकट होते हैं तब श्री राधा रानी की कांति और ब्रज के रस माधुर्य से परिपूर्ण श्री राधा गोविंद श्रीमद् महाप्रभु के रूप में समुदित होकर पात्रा पात्र विचार कुरुते न स्वम पदम इच्छते देया देय विमर्श को नहीं लगा कहा पतित हो अथवा हरिदास जैसे शरणागत हो अथवा सठ गोस्वामी पादों में अपनी ही निज कृपा शक्ति को प्रतिष्ठित करके रघुमाधुरी के प्रवाह और ब्रज की अनंत महिमा को ब्रह्मांड व्यापी करने के लिए श्रीमद् महाप्रभु की मोहती कृपा ही श्री रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई है। लेकिन उसी शरीर में एक दिन ऐसा भी आता है जब शीशे में अपने ही प्रतिबिंब को देखकर हम भयभीत हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का जो रूप है वो नित्य नवीन है, नित्य रूपक है, नित्य आनंद प्रदान करने वाला है। श्रीमद् महाप्रभु का जो रस माधुर्य है वह नित्य है, शाश्वत है, अनादि है, अखंड है, अनंत है, अरूप है, वेद से परे है, नेकी नेकी कहकर संपूर्ण शास्त्र समुच्चय जिनके चरणों में शरणागत होकर प्रार्थना पूर्वक यह पुरुषार्थ और प्रयास कर रहे हैं कि कभी कोई जन्म हमें जीवन में ऐसा प्राप्त हो सके जब महाप्रभु की कोई कृपा किरण हमारे अंतःकरण में प्रकाशित हो उठे। जैसे सूर्य की प्रथम किरण का स्पर्श करते ही जलाशय में कमल विकसित हो जाता है और उसके गर्भ में भरा हुआ मकरंद उसके पत्रों पर विकीर्ण होकर अपनी ओर भ्रमण का आवाहन कर लेता है और जलाशय उस कमल के मूल में बड़ी हुई कीचड़ की ओर बिना खड़ा किए जैसे भ्रमर उसके गर्भोच्छलित मकरंद का संसेवन करने के लिए जलाशय की ओर चल पड़ता है, ऐसे ही जन्म जन्मांतरों से हमारे अंतःकरण में सूखा हुआ जो कृष्ण प्रेम का बीज था और पड़ा हुआ था जिसे उत्तम ऊर्जा नहीं मिल रही थी, जल नहीं मिल रहा था, प्रकाश नहीं मिल रहा था, वो कृष्ण नाम जो हमारी वासना कामना देहिंसना जलत्रेषणा विस्त्रेषणा यशेषणा की ओर आसक्त और आकृष्ट हुई पाषाण हृदय के ऊपर बीज के रूप में पड़ा हुआ था लेकिन भक्तिकल्प तनु के रूप में विकसित नहीं हो रहा था। एक कृष्ण नाम जीवेर चौथो पाप हरे, जीवेर साधनाई चौथो पाप चोरीते परे। एक कृष्ण नाम यदि लोए बहु बार तथापि यदि ना बोहे अश्रुधार ताहिला जाइबे अपराध साक्षय प्रचुर। कृष्ण नाम बीज मात्र ना होए अंकुर। एक तरफ तो एक कृष्ण नाम इतने पापों को नष्ट कर सकता है जितना पाप करना मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वही कृष्ण नाम प्रभात से निषिद्ध तक और शैशव से जरा तक निरंतर उसका उद्घोष रखने और नाम संकीर्तन करने के बाद भी आंखों से वासना कानों से निंदा श्रवण की उत्कंठा हाथ पैरों से अपन व्यवहार की निवृत्ति न हो तो यही समझिए कि वह कृष्ण नाम हमारे हृदय पाषाण के ऊपर बीज के रूप में पड़ा हुआ है। अभी कोई ऐसा सत्संग सरोवर नहीं मिला जिससे उस बीज को जल मिल जाता, अभी कोई ऐसा संत की चरण रज नहीं मिली बिना महत्पाद रजोभिषेकम, किसी संत की चरण रज रूपी खाद नहीं मिली। इस बीज को संत की चरण रज रूपी खाद मिल जाए और सत्संग के सरोवर से कृष्ण प्रेम के आंसू आंखों में मिल जाए और हृदय में कृष्ण विरह का ताप मिल जाए जैसे उत्तम यूरिया उत्तम पानी और सूर्य का प्रकाश उस बीज को वृक्ष में परिवर्तित करके अनंत मीठे फलों से युक्त कर देता है। ऐसे ही हमारे हृदय में पड़े हुए इस कृष्ण नाम को वृक्ष के रूप में परिणत करने के लिए ही रक्षा कर देंगे, और अगर किसी संत की कृपा हो गई तो विधि विधान से रहित, मर्यादा आदियों से रहित, चाहे शूद्र हो, ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, यति हो, पठित हो, अपठित हो, वृद्ध हो, जवान हो, बाल वृद्ध वनिता, किसी भी जाति वंश परंपरा के क्यों न हो, किंतु अगर भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर संत कृपा का अनुग्रह हो गया तो विधि विधान से रहित होने पर भी ये वही भगवता प्रोक्ता उपाय उपलब्ध है। अंत पुरुषाम विदुषाम विद्धि भागवता हितान ज्ञानाय नरो राजन ये प्रमादे धावन निविल्यमा नेत्रे न स्खले न पते भी आंखों पर पट्टी बांध कर दौड़ो। श्रीमद भागवत कह रहे हैं और श्रीमद महाप्रभु कहते हैं श्रीमद भागवतम प्रमाण मंगलम, मेरा प्रमाण क्या है श्रीमद भागवत, और श्रीमद भागवत जी कहते हैं कि आंखों पर पट्टी बांध कर दौड़ो। अगर संसार में किसी से कहे कि यहाँ से डोरिया मार के पट्टी बांध कर ज्ञान दूरी तक दौड़ो तो आप कहोगे दुश्मन ही निकालना चाहते हो, कितने गड्ढे कितनी नाली कितने मोड़ कितने प्रकार की विपत्तियां, अगर उसमें कहीं हम गिर पड़े किसी गड्ढे में गिर पड़े नाले में गिर पड़े हाथ पर टूट जाएंगे मर जाएंगे माथा फूट जाएगा, लेकिन श्रीमद् भागवत कहती है भगवान के चरणार बिंदु में विश्वास करके विश्वास की पट्टी आंखों पर बांध कर और भक्ति के मार्ग पर अगर तुम दौड़े, बोले अगर दौड़े और गिर पड़े तो बोले गिर पड़ो तो पट्टी खोल कर देख लेना, वो गाड़ी नहीं होगी, वो गड्ढा नहीं होगा, वो दीवार नहीं होगी, या तो तुम गिरोगे नहीं, और यदि गिरे तो फिर राधा रमन के चरणों में गिरोगे। उपक्रम है, उपयोग है, चरितार्थता कृतार्थता है, इसकी पूर्णता है और इसका समलंकरण है, अलंकरण है, इसकी प्राप्ति की ही समुख भाव वृत्ति का ही जीवन में वह प्रवेश हो। श्री रूप गोस्वामी पाद के ऊपर कृपा करने के लिए ही महाप्रभु उनके ग्राम में पधारे और श्रीमद महाप्रभु के स्पर्श मात्र से ही आचार्य चरण जो महाप्रभु, अभी आपने कहा जैसे हास्य भी भक्ति है, महाप्रभु भी बड़े प्रौढ़ थे, किसका स्पर्श कर दे। जब महाप्रभु वृंदावन से भागे जा रहे थे कीर्तन करते हुए आजान रंगी तो भजो, जब महाप्रभु चलते थे तो ऐसा प्रतीत होता था सोने का पहाड़ ही चला होता, कीर्तन करते हुए चले जाते थे। उसी समय एक ग्रामीण व्यक्ति एक मिट्टी के घड़े में और बहुत सारा मठा भरकर लगभग 15 लीटर मठा भरकर और बेचने के लिए चला। जब वो गांव के बाहर निकला उसी समय श्रीमद् महाप्रभु कीर्तन करते हुए जा रहे थे। महाप्रभु ने उसकी ओर देखा और उसने कहा कि भाई लंबी यात्रा से और निरंतर नाम संकीर्तन से मेरा कंठ थोड़ा सूख गया है, आप थोड़ा सा मुझे अपना मठा पिलाएंगे? कहा जरूर पियो। अद्भुत आकर्षित महाप्रभु का दिव्य जिनमें अलौकिक स्वरूप देखकर वह आनंदित हो उठा। रूपी जी आपके पास कोई पात्र है? बोले मेरे पास तो कोई पात्र नहीं है, मैं तो विरक्त महात्मा ऐसे ही भ्रमण किया करता हूँ, मेरे पास कोई पात्र नहीं है, आप चाहो तो आपके घड़े से ही पीऊं। उसने देखा है ना अद्भुत महाप्रभु का दिव्य स्वरूप अलौकिक से अनारविंद मान सरोवर में मोती खाकर एक पंक्तियों में ही उड़ने वाले हंसों के समान शोभायमान, जिनकी संत पंक्तियां अष्टमी के चंद्रमा के समान, जिनका ललाट पटल बर्फ से आच्छादित कैलाश पर उतर आई, काली काली घटाओं के समान, जिनके चंद्रमा पर आंदोलित होने वाली कुंतल अलका मिली, ऐसे अद्भुत महाराज को देखकर वो बड़ा आकृष्ट हुआ। उसने घड़ा दे दिया, लीजिए साधु आप जितना पिलाओ पी लीजिए। और महाप्रभु ने घड़ा लगाया और गटर 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 वो सोच ही रहा था कि महाराज 15 लीटर मठा महाप्रभु पी गए, भाई बड़ा तगड़ा महात्मा मालूम पड़ता है, 15 लीटर मठा पी गए। कबरा घड़ा उसने उल्टा किया, एक बूंद मठा नहीं भरा। अच्छा भाई महाप्रभु हरी बोल करते हुए चल दिए। वो गांव वाला पीछे भागा, अरे महाराज पैसे तो दो। बोला मैं तो भिखारी, मेरे पास पैसे कहाँ से आए, ये तो बात हुई नहीं थी कि प्यास बुझाने के बदले पैसा देना पड़ेगा। अरे भाई मुझे पैसा दीजिए, मुझे पीछे मेरे दो साधु आ रहे हैं उनसे पैसा ले लेना। महाप्रभु ਨਾ ਕਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਈ ਤੋਂ ਕਰ ਬੋਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਰਾਗੀ ਅੰਮੀ ਬੇਰਾਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰੀ ਬੋਲ ਹਰੀ ਬੋਲ ਦਾਦੂ ਕੇ ਪਾਸ ਲੈਨੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ
ਚਲੇਗਾ।
पद्धति सर्वदा भिन्न है। अगर वहाँ बिना तैरना जाने वहाँ डूब गए तो मर जाओगे, इसलिए वहाँ तैरना ही मंजिल में है। अगर वहाँ डूब गए तो मर जाओगे और यहाँ डूब गए तो तर जाओगे। अगर वहाँ डूब जाओगे तो यमराज के पास पहुँच जाओगे और इस वैष्णव साहित्य में और महाप्रभु की कृपा में यदि डूब जाएंगे तो निश्चित रूप से भवसागर से मुक्त होकर पर्वतचरणारविंद को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए नामे रुचि जीव द्वया, नाम में जो रुचि हो वह श्री रूप गोस्वामी पाद के संपूर्ण ग्रंथों का यही सार है। श्री कृष्ण चरणारविंद में प्रीति हो, नाम में हमारी रुचि हो, नाम हमारे जीवन का व्यसन हो जाए। अभी नाम हमारे जीवन का नियम है, बहुत अच्छी बात है, मेरे नाम हमारे जीवन का व्यसन हो जाए। अभी तो दो माला कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। वो दो माला करते समय भी पत्नी ने गरम गरम हलवा लाकर मेज पर रख दिया, अभी जल्दी करो ठंडा हो जाएगा, मैं गर्म करने वाली नहीं हूँ। फिर तो चार चार दाने फेंकना शुरू कर देते हैं, जल्दी से सुबेरु हाथ में आ गए तो हलवा काम है। अभी हमारा भजन नियम है, लेकिन संतों की कृपा हो जाए तो भजन हमारा व्यसन हो जाए। उठते बैठते त्रणवन सुभद्रा निरसान रुमाणे, भगवान के सुमधुर चरित्रों को सुनकर विरक्त होकर महाराज अपूर्व भाव से जीवन के अनंत समर्पण कृष्ण प्रेम आनंद का नम आस्वादन कर सके। श्री रूप गोस्वामी पाद ने ललित माधव विलुप्त माधव श्री गुप्त सामंत सिंधु और सब उनके भाई हर संपूर्ण दृष्टिकोणों का आपने महत्व महान भावों से हमारे वृंदावन की शोभा श्री भक्त जी श्री भवान जी महाराज श्री पुराण गोपालाचार्य जी ने अपने स्तोत्रों में श्री पंकोचन मातृश्वर वैष्णवाचार्य श्री पंकोचन गोस्वामी जी महाराज को आप सुनेंगे और सबके श्री स्वामी जी महाराज यहाँ प्रतिष्ठित हैं। लेकिन संपूर्ण आचार्यों का एक ही दृष्टिकोण है, कृष्ण प्रेम हृदय में पैदा हो, श्री कृष्ण के नाम में हमारी रुचि हो। जैसे हम दुनिया की चीजों के बिना नहीं रह पाते, ऐसे ही हमारी जिह्वा को में विफला, इस जिह्वा विफल होकर कृष्ण भजन की ओर प्रेरित हो। महाराज हमारा जीवन अभी हम इसके बिना नहीं रह सकते, उसके बिना नहीं रह सकते, लेकिन गोपियां कहती हैं उसके जब तक कथा रहा वो कब श्री कृष्ण के बिना रहा जा सकता है। लेकिन श्री कृष्ण की कथा के बिना नहीं रहा जा सकता। अभी हम चाय के बिना उठ नहीं सकते, एसी के बिना सो नहीं सकते, गाड़ी के बिना चल नहीं सकते, लेकिन जिंदगी में मरने से पहले वो क्षण प्राप्त करना बहुत जरूरी है कि सब के बिना रह सके न रह सके, भजन के बिना न रह सके। भजन हमारे जीवन का नई सर्विक अंग हो जाए और वही हमें भगवान के चरणारविंद तक पहुंचा देगा। इसी का प्रयास और कृपा होगी श्री रूप गोस्वामी महाराज द्वारा कली काल के जीव के ऊपर। आज जाते जाते भी वो कैसा संदेश दे गए कि हजारों वर्षों के बाद हर किसी परिवार में चले जाइए, आप बाबा का भी चित्र मांग लीजिए तो मुश्किल से प्राप्त होगा। किंतु आज 400 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी आज हम समवेत रूप में उपस्थित होकर उनके चरणारविंद की महिमा का आस्वादन करके अपने जीवन में एक लक्ष्य एक राजमार्ग और आचरण को प्राप्त कर रहे हैं। ये महाप्रभु की कृपा है और आचार्य चरण की साधना का वह दिव्य प्रसाद है जो आज भी महक रहा है। कमल तो सूर्यास्त होने पर मुरझा जाता है, लेकिन भी आचार्य श्री रूप गोस्वामी महाराज हैं जो हजारों सूर्य और चंद्रमा का उदय अस्त हुआ किंतु इनका व्यक्तित्व एक अनंत ज्योति देता हुआ आज भी कलिकाल के आसक्त जीव को आनंद समाधान संतुष्टि और कृष्ण भजन की रुचि प्रदान कर रहा है। ऐसे दिव्य महाप्रभु कृपा स्वरूप श्री रूप गोस्वामी पाद के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणति पूर्वक कोटि कोटि प्रणाम पूर्वक मैं अपनी वाणी को
जो हमारे भी जगत में जो कुछ व्यक्त किया कृष्ण वो नहीं कर सकते। बड़े बड़े कवियों ने देने वाले भी जल्दी व्यक्त करने के सोचते हैं लेकिन उनके भी कलम लेखनी काप जाता है, स्मरण करने वाली लेखनी में समर्थ हो जाते हैं और लेखनी हो जाते हैं। जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी विचार करते करते बाबू प्रसार करोड़ बोले परिक्रमण करा मरता जिनको वहां पर परिचित थी, जब प्रश्न करते दो तो वहां पर कुछ काम गए थोड़ा आगे की नहीं क्या कह रहा हूँ कि बीच में प्रश्न क्यों उठा दिया। जहाँ पर ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं भूमि अंति जब छुड़ाया उन सब विषयों को रूप स्थानी जब मैं छोटा से पतन में कहूंगा एक बार चंदा बल के ज्ञान का कोई कठिन सहदिया प्रतिमा को आ करके और राधा जी से कहने लगे यार मेरे सखी का स्वभाव क्या बताऊँ क्या बात है। बोले कृष्ण स्वयं अपने हाथों से उनको श्रृंगार चंदन आदि का देखा अच्छा लेकिन आपका जो स्वभाव बोले सखी स्वभाव